हम पिछले दिनों में एक सीरीज को लेकर चल रहे हैं, मैंने बार बार बताया है। सो दो हमने पहले वाचन को देख लिया और मैं बार बार उसको दोहरा रहा हूँ, इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि हम उसको समझ सकें और कुछ लोग जब नए आते हैं तो भी जान सकें, या जो नहीं रहे पिछले दिनों में मिस किया तो समझ सकें। हम जन्म से मसीह नहीं होते, ईसाई हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं पर मसीह नहीं होते। और मैंने आपको पहले बताया डॉक्टर घर में पैदा होने से डॉक्टर नहीं बन जाते। डॉक्टर बिली ग्राम बहुत बड़े सेवक रहे हैं दुनिया के, तो उनके पास चले गए, उन्होंने अपनी बुक में ये लिखा है। हाँ, डॉक्टर के घर में पैदा होने से डॉक्टर बन सकता है, लेकिन एक प्रक्रिया में से होके जाना पड़ता है, एक प्रक्रिया जिसमें होके जाना पड़ता है, जो तो प्रशिक्षण है, जो सारी चीजें हम जानते हैं। ठीक, मसीह जीवन भी यही है। मसीह जब हम बनते हैं तो विश्वास के द्वारा मसीह बनते हैं। हम पापी हैं, सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से है, सब पापी। मैं उदाहरण पहले दे चुका हूं कुछ, अब दोबारा नहीं दोहराऊंगा। लेकिन जब बड़े होते हैं, उसमें आते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, कानों से हम सुनते हैं परमेश्वर के वचन को, मस्तिष्क से हम समझते हैं परमेश्वर के वचन को, हृदय से हम ग्रहण करते हैं परमेश्वर के वचन को, मुंह से हम अंगीकार करते हैं, कन्फेस जिसको कह रहे हैं, अंगीकार करते हैं परमेश्वर के वचन को, और अपने जीवन के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। तो जब हम ग्रहण करते हैं तो मुंह से अंगीकार करते समय करना, वो बपतिस्मे के द्वारा करते हैं। कि जब हमने विश्वास कर लिया, पापों की क्षमा का हमें अनुभव हो गया, हमने अपने पाप को पापी समझा, परमेश्वर क्षमा मांगी उस प्रभु के कार्य के लिए जो उसने मेरे और आपके लिए क्रूस पर पूरा किया, मनुष्य बनकर आ गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन झूठा, और उस पर जब हम विश्वास करते हैं तो उस विश्वास के द्वारा उसके बाद हम साक्षी देते हैं जो बपतिस्मे की साक्षी है, और वो मुंह से अंगीकार होना, और तब फिर हम जीवन में प्रदर्शित करते हैं, उस सहभागिता में हम बढ़ते चले जाते हैं, बहुत कुछ है। सो ये प्रक्रिया। और जब हम बपतिस्मा लेने के बाद कलीसिया में जुड़ते हैं, तो मैंने बताया था एक विश्वव्यापी कलीसिया, एक स्थानीय कलीसिया, और हमें एक स्थानीय कलीसिया के स्थानीय परिवार के अंग बन जाते हैं, उसमें परिवार में जुड़ जाते हैं। तो जुड़ते समय हम कुछ प्रतिज्ञा लेते, कुछ वाचा बांधते, और ये बहुत जरूरी है, और कई लोग इस पर गंभीर नहीं होते, कई लोग इसमें गंभीर नहीं होते। चर्च केवल तीन काम के लिए नहीं है, मैं इंग्लिश में अक्सर बोलता हूं, हैचिंग, मैचिंग, डिस्पैचिंग। जब बच्चा पैदा हो गया, उसको बपतिस्मा दे दिया, हैच कर दिया, जब बड़ा हो गया तो मैच कर दिया, शादी कर दी, जब मर गया तो उसको दफना दिया, डिस्पैच कर दिया। चर्च इसलिए नहीं, परमेश्वर का कलीसिया परमेश्वर का परिवार है, परमेश्वर परिवार, और हमें इसकी महत्ता को समझना है। और वाचा लेते समय में हम उन्हीं बातों को स्मरण करके वाचा बांधते हैं कि आज से मैं इस कलीसिया में प्रभु के साथ जुड़ा हूं, कलीसिया में। तो जो लोग नए लोग आ रहे हैं, आप विश्वास कर रहे हैं और विश्वास में बढ़ रहे हैं, आपको एक बात कर सुना है, हम मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं इसलिए ताकि आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकें। ये कलीसिया, ये परिवार आत्मिक जीवन में मजबूत होकर दृढ़ हो सके, और ये आपके अंदर रुचि होनी चाहिए, आपके अंदर समर्पण होना चाहिए, आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को पाया और यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने तैयार हैं, तो पूरे समर्पण कर, ये धर्म का पालन करना नहीं है या कुछ रीति विधियों का पालन नहीं करना है, ये प्रभु यीशु मसीह साथ संबंध जोड़ करके अनंत काल के जीवन के लिए अपने संबंध को बनाना है, और इसको समझना है। ये जो संबंध है मसीह परिवार में, ये अनंत काल का संबंध परमेश्वर साथ और परमेश्वर के लोग साथ है, बाइबल उस बात को स्पष्ट बताती है। तो पिछली बार जब हम इसको देख रहे थे, तो हम शायद संभवतः तीसरे में आए थे, और तीसरे में मैंने कुछ बातों को आपको शेयर करा था। चौथी वाचा, इस वर्तमान युग में जब तक हम अपने महान पिता परमेश्वर एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के आगमन की धन्य आशा की बाट जोते हैं, जब वो आएगा हमें ले जाएगा, तब तक हम प्रयत्नशील रहेंगे संयम, खराई एवं भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। हम इस कलीसिया की सुषमाचारी सेवा को, हम सुषमाचार पर विश्वास करते हैं, ज़ाइन चर्च सुषमाचार पर शुरू से आधारित रहा, संपन्नता भी आधारित नहीं रहा, सच्चे सुषमाचार को जो प्रभु के इस वचन बाइबल में पाया था, उस पर हम विश्वास करते हैं, उसको पालन करते हैं और उसका प्रचार करते हैं, उसको सिखाते हैं, और ये हम सबके लिए है। सुषमाचार सेवा को हम प्रोत्साहन करने के द्वारा रक्षा करेंगे, क्या मतलब है रक्षा करने? संसार में बहुत सारे सुसमाचार हैं, बहुत सारे संपन्नता के सुसमाचार, और जब हम वहां सामने आते हैं तो हमें उन सुसमाचार को समझना है। गांव देहातों में जब हम जाते हैं, गांव देहातों में, और हम देखते हैं प्रभु किस तरह का काम करा, तो वहां पर अक्सर परमेश्वर के वचन को तोड़ मड़ोड़ के रखा जाता है। प्रभु का वचन हमें प्रभु की सामर्थ्य के बारे में सिखाता है। हमारा परमेश्वर चंगाई करने वाला परमेश्वर है, ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन मात्र वो चंगाई नहीं देता, मात्र और शारीरिक चंगाई दूसरा स्थान, जरूर वो जरूरी है, परमेश्वर प्रेम करता है। हम लोग बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमने अपने जीवन में 40-45 साल की सेवा में बहुत कुछ अनुभव किया, दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना करी, उनको निकाले जाने के लिए प्रार्थना करी है, बहुत कुछ किया, प्रभु ने सिखाया है, दिखाया हमें 40-42 साल में, और हम उस पर विश्वास। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हम क्या विश्वास करते हैं कि मनुष्य संसार की सारी वस्तुओं को प्राप्त करे, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो नाम हो, चाहे वो सम्मान हो, चाहे कुछ भी प्राप्त, लेकिन अगर अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। अर्थात मनुष्य की सबसे प्राथमिक आवश्यकता मात्र चंगाई नहीं। हाँ, एक चीज मैं समझाना चाहता हूं, बीमारी आ सकती है, लेकिन एक विश्वासी के जीवन में अगर उसका जीवन प्रभु के प्रति समर्पित है और उसके जीवन में प्रभु वास करता है तो दुष्ट आत्मा उसको परेशान नहीं करता। शारीरिक दुर्बलता आती है, शारीरिक दुर्बलता पाप के कारण है, जब तक है कोई ना कोई बीमारी हर एक के जीवन में लगी रहती है, पर उसकी भी चंगाई, प्रभु ने उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना का साधन दिया है, प्रार्थना हम करते हैं, और उपचार का साधन दिया, उपचार भी हम करते हैं। सो प्रार्थना हमारी प्राथमिकता है, परमेश्वर पर निर्भरता हमारी प्राथमिकता है, ये हमारी। और अगर हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, अपने पापों की क्षमा मांगी है, और हमें निश्चय कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया, तब हमारा जीवन अब एक समर्पण के साथ प्रभु के साथ चलने वाला होता है, प्रभु के साथ चलने, और यही कलीसिया की वाचा का तरीका है। तो जब वाचा बांधते हैं तो हम उसको उसके साथ, तो कहना हम सुसमाचार की सेवा को क्या करेंगे, हम उसको प्रोत्साहित करेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। कैसे? अर्थात झूठे सुसमाचार का हम सामना करेंगे, चाहे वो संपन्नता का सामना, यीशु मसीह पर विश्वास कर लो तुम्हें ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं 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 गलत है। परमेश्वर लोगों को केवल धनी बनाने नहीं आए हैं, परमेश्वर लोगों को पाप से छुटकारा देने के लिए आए। सबसे बड़ी आवश्यकता मनुष्य की पाप से छुटकारा, पाप की क्षमा की है। रोटी कपड़ा मकान नहीं है, वो तो बाद की बात है। सबसे पहले अगर सब कुछ आपको मिल जाए लेकिन आपकी आत्मा फिर भी नरक में जा रही है तो बेकार है। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को मनुष्य के पापों की क्षमा के लिए, छुड़ौती के लिए भेजा है, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हमारे और आपकी जिम्मेदारी है झूठे सुसमाचार के से उससे साधना करना है तथा उसको बनाए रखें, साथ ही परमेश्वर के वचन का प्रचार, सुसमाचार की विधियां का संचालन। परमेश्वर का वचन कहीं भी हमें, हम उसकी के साक्षी देने से पीछे नहीं हटेंगे, कहीं भी हमें लोग हमें जानेंगे। और मैं अक्सर बोलता हूं हमारी साक्षी शब्दों के द्वारा होती है, हमारी साक्षी जीवन के द्वारा, हमारी साक्षी कार्यों के द्वारा होती। हम कई बार मुंह से साक्षी नहीं दे पाते, बोलते हैं, लेकिन लोग हमारे काम को देखकर जान जाते हैं, काम को देखकर जान जाते हैं, और हमारे जीवन में आना है। और मुंह से भी साक्षी देने से हमें घबराना नहीं है, ये बताने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तो मैं देख रहा है, कह रहा है कि हम इसको रखेंगे, सुसमाचार की विधियों का संचालन। सुसमाचार की विधियां क्या है? दो मुख्य विधियां हैं, जब हम वाचा बांध रहे हैं तो इस बात वक्त में ले रहे हैं, क्या दो मुख्य विधियां? बपतिस्मा एवं प्रभु भोज। बपतिस्मा मैंने कहा कि अंगीकार करना है, फिर से मैं बोल रहा हूं, हम कानों से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, बाइबल कहती है रोमियो उसका 10:17 पद, और विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। तो हम कानों से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मस्जिद से परमेश्वर के वचन को समझते हैं, हृदय से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं और मुंह से उसका अंगीकार करते हैं। जब बपतिस्मा लेते हैं, हम खड़े होते हैं पानी में, तो हम कहते हैं मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, मैंने उसको स्वीकार किया है, अब मैं पाप के लिए मर गया। और जब हम इस बात की साक्षी देते हैं तब हमें डुबाया जाता है, वो इस बात का, एक पापी व्यक्ति, एक मृतक व्यक्ति को दफनाया जाता है, हम दफनाए गए। रोमियो उसके 6:1 से लेकर के 4 पद तक पूरा इस पर वर्णन है। और जब हम खड़े होते हैं तो इस बात का प्रतीक है, अब मैं नए जीवन के लिए खड़ा हुआ और मैं नए जीवन की चाल चलूंगा। सो बपतिस्मा, वो कह रहा है बपतिस्मे एवं प्रभु भोज, ये दो विधियां प्रभु भोज। प्रभु भोज केवल आशीष की भोज नहीं है, कई जगह ओ ये आशीष पानी है आशीष का, लेकिन बाइबल कहती है यदि मनुष्य अनुचित रीति से इसमें संभाग ले तो वो दंड पाएगा। यदि आपने अपने जीवन में पापों की क्षमा नहीं पाई है, आपको उद्धार का अनुभव नहीं है, आपने आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत प्रभु और उद्धार का कार्य नहीं करा है, तो अगर पाप में जीवन या आपके अंदर कोई ऐसी गंदी आदत है अभी भी उसके बाद भी कोई भी ऐसी आदत, तो आप इससे अपने आप को अलग रखें। वो केवल आशीष नहीं है, लेकिन कहता अगर तुम ऐसा अपने आप को जांचते तो तुम दंड ना पाते। इसीलिए कितने लोग सो गए हैं। परमेश्वर का वचन पहला कृतियों के 11 अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप से इन बातों का वर्णन करता है और हम बार बार टेबल के समय में उसको स्मरण करते हैं, दोहराते हैं। तो ये दो बातें हैं जिसको हमें समझना है। बपतिस्मा एक विश्वास करने के बाद आप जो प्रभु में विश्वास कर रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, आपके लिए विश्वास करने में दूसरा कदम है कि आप अपने जीवन को तैयार करें और बपतिस्मे के द्वारा साक्षी, और उसके बाद तब आप कलीसिया में शामिल होते हैं और तब आप प्रभु भोज में संभागी होते हैं। और ये प्रभु भोज उस वाचा को नई वाचा के बारे में कुछ दिन पहले मैंने प्रचार किया था। ये नई वाचा जो प्रभु ने यिर्मयाह उसके 31 अध्याय में पहले ही बता दिया कि मैं तुम्हारे साथ एक नई वाचा बांध, वो पत्थर से या किसी चीज से नहीं, वो तुम्हारे हृदय में लिखी जाएगी, तुम्हारे हृदय में। और वो नई वाचा में होकर के प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, उस नई वाचा में होकर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया, उस नई वाचा को पूरा करने के लिए उस प्रभु यीशु मसीह ने वो पवित्र लहू बहाया, अपनी देह को तोड़ जाने दिया। अब उसके मारे जाने, गाड़े जाने और जलाए जाने के बाद प्रभु ने अपने उस उद्धार को कार्य करा है। अब वो परमेश्वर उस वाचा को मेरे और आपके हृदय में अपने पवित्र आत्मा के द्वारा लिख देता है, अर्थात पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन को जागृत कर देती है, पाप के प्रति कायल करती है, सचेत करती है, परमेश्वर के वचन को स्मरण दिलाती है। ये पत्थर की पट्टियों पर नहीं है, पत्थर की पट्टियां तो टूट गई, पत्थर की पट्टियां तो समाप्त हो गई, सबको समाप्त हो गई, लेकिन अब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया, परमेश्वर ने वचन को दिया, इसके द्वारा वो मेरे और आपके जीवन में, हृदय में, मन मस्तिष्क में उस वाचा को लिखता है। तो जब हम प्रभु भोज में आ जाते हैं तो हम उसकी वाचा को स्मरण करते हैं, उस नई वाचा को, देखो ये मेरी नई वाचा का कटोरा है, नई वाचा, पुरानी वाचा बीत गई, जो पुरानी वाचा मनुष्य के छुटकारे के लिए काफी नहीं थी उस वाचा के द्वारा, इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा मैं वाचा को, उस सारी वाचा को लोप करने नहीं आया हूं लेकिन पूरा करने आया हूं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में कहा था पूरा हुआ सब कुछ, अर्थात बलिदान का कार्य पूरा हुआ, वो कार्य जो मनुष्य करना चाहता था जिससे उसको छुटकारा नहीं मिल सकता था, वो सब कुछ कुछ नहीं करता लेकिन प्रभु ने उसको पूरा किया। सो ये हमें समझना है और तब हम आगे बढ़ते हैं, और तब इस तरीके से करते हुए जैसे मैंने कहा हम उसमें आगे बढ़ते चले जाते हैं। और तब आगे वो कहता है कि बपतिस्मे और प्रभु भोज एवं कलीसिया अनुशासन का किया जाना क्या दी समर्थन करेंगे। कलीसिया अनुशासन मत्ती 16:17-18 तीन अध्याय है, लेकिन 18 अध्याय में उस अनुशासन का वर्णन है। अब जब परमेश्वर हमारे लिए कर दिया तो ये विधियों का संचालन जो है, बपतिस्मा, प्रभु भोज, कलीसिया अनुशासन का किया जाना, हम इसका समर्थन करेंगे, हम इसके साथ होंगे, हम इसको स्वीकार करेंगे, इसका विद्रोह नहीं करेंगे, इसका विरोध नहीं करेंगे। कुछ लोग कहते हैं अरे लाल लाल ये ना लोहू का, वो गाय का लोहू पिलाते, गलत है ना, अरे ये ऐसा करते हैं कि देह का रोटी और मांस खिलाते हैं, नहीं गलत है, वो तो एक प्रतीक है, इसमें कोई जादू नहीं है या इसमें जादू नहीं होता, इसके द्वारा जो अगर जादू मानते हो गलत मानते। परमेश्वर ने सबसे उत्तम काम ये किया है कि अपने लोगों के लिए उसने एक ऐसा स्मारक बना दिया जो प्रभु भोज है, कहीं भी कुछ विश्वासी लोग पेड़ के नीचे, गांव में, खेते में, कहीं भी करके कर सकते हैं। अगर मान लीजिए प्रभु कहता मेरा स्मारक वहां पर है, यरूशलेम में, इसराइल में, और तुम अगर वहां जाओगे तभी तुम्हें दर्शन मिलेगा तुम्हें, तो हम में से कितने होते नहीं जा सकते थे, नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, प्रभु जानता था कि जहां पर प्रभु के लहू के द्वारा छुड़ाए गए लोग, उस पर वचन पर विश्वास करने द्वारा जिन्होंने जीवन पाया, 4-5-10 लोग इकट्ठा होंगे, और आज कितनी जगह ऐसा है। सो परमेश्वर धन्यवाद हो, तो कह रहा है कि हम उसका और अनुशासन करेंगे। जब हम इस बात आते हैं तब आगे चल करके, तब इसी में आगे क्या वो कहता है, प्रभु भोज कलीसिया अनुशासन का, तब हम वाचा बांधते हैं, इसके आगे हम वाचा बांधते हैं
कलीसिया की सेवा एवं खर्च हेतु तथा गरीबों की सहायता हेतु एवं समस्त स्थानों में सुसमाचार के प्रसार हेतु आनंद पूर्वक उदारता के साथ तथा नियमित रीति से एवं सच्चाई से विश्वासयुक्तता के साथ अपना धन देंगे। ये बहुत जरूरी है और थोड़ी देर के लिए आज मैं इस पर ठहरना चाहता हूं। ये एक ऐसा विषय है जिसको हम बहुत लंबे बहुत तरीके से समझते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन बाइबल में करीब 3000 से ज्यादा ऐसे रेफरेंसेस हैं जो परमेश्वर का वचन लोगों को देने के बारे में सिखाता है। परमेश्वर का स्थान एक सिद्धांत है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, पहले उसने दे दिया। और जो आज हमने स्थल पढ़ा था पहला क्रंथियों दूसरा क्रंथियों दूसरा क्रंथियों उसका क्या नाम से 8 अध्याय उसका 9 अध्याय, समय नहीं था कि हम पूरे उसमें जाएं। दोनों अध्याय एक ऐसे अध्याय है, फिलिपियों उसका 4 अध्याय, कई सारे ऐसे अध्याय है, लूका उसका 16 अध्याय, जहां बार 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 लूका 16 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह से शिक्षा देते हैं, बार बार गिविंग के बारे में देने के बारे में सिखाया गया है। और हमको कलीसिया को सीखना है, कलीसिया परमेश्वर मुझे और आपको रोटी कपड़ा देता है, रहने के लिए छत देता है, चाहे कितने प्रभु का धन्यवाद हो कोरोना में कितने लोग परेशान थे लेकिन प्रभु ने फिर भी अपने लोगों की रक्षा की है। परमेश्वर ऊपर नहीं से देता लेकिन परमेश्वर हमारे कार्य पे हमारे परिश्रम पर आशीष देता है, आशीष देता है। और ये हमें समझना, इस बात को हमें समझना है। जब हम इस बात में और आगे बढ़ते हैं तो ये सच है। वो क्या कह रहा है, शब्दों का ध्यान रखिए, कह रहा हम कलीसिया की सेवा एवं खर्च हेतु तथा गरीबों की सहायता एवं समस्त स्थानों पर सुसमाचार प्रचार। पहली बात, आनंद पूर्वक उदारता से, हमारा हृदय उदार हो, दबाव से नहीं, बोझ हो के नहीं, 5 रुपए 10 रुपए डाल दिए बहुत बड़ा, तथा नियमित रीति से। दूध वाले का आप नियमित रीति से देते हैं, घर का किराया नियमित रीति से देते हैं, बच्चों की फीस नियमित रीति से देते हैं, डॉक्टर के दवाई के लिए नियमित रीति से, सब जगह नियमित रीति से देते हैं। कलीसिया में क्या आप नियमित रीति से देते हैं? वचन सिखाता है, या आपने प्रतिज्ञा की है, जब आपने वाचा लिया आपने प्रतिज्ञा, नियमित रीति से। ये एक ऐसा विषय है, दो विषय बाइबल के बहुत ऐसे हैं जो लोग सुनना नहीं चाहते। एक विषय यह है धन के बारे में, और इसलिए हम धन का बारे में ज्यादा प्रचार नहीं करते। साल में एक या दो बार हम प्रचार करते हैं और विषय आ जाता तब करते, अलग से नहीं करते। लेकिन हमारा फर्ज है कि हमको सिखाए, कलीसिया को सीखना है, और ये सेवका का फर्ज है, सीखना है, सिखाना है। और इसलिए हम प्रभु के भय में गंभीरता से सच्चाई के साथ बिना लालच स्वार्थ के इस विषय को आपके सामने बांटना चाहते हैं, क्योंकि आपको इसका भी हिसाब देना पड़ेगा, हमें हिसाब देना पड़ेगा कि जो लोगों ने कलीसिया ने में दिया है, हम तो उसका कैसा हिसाब किताब रखते हैं। क्या सच वो परमेश्वर के कार्य के लिए है या हम अपने मौज मस्ती के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी हमें सावधान। बाइबल के सिद्धांत हर चीजों में दिए गए हैं, बहुत है, वो पुराने नियम से लेकर सब कुछ है, कैसे हिसाब लगना है, कैसे जो कर रखना, कैसे क्या करना, क्या करना। लेकिन दोनों चीजें, अगर हम गलत हैं तो हमें परमेश्वर सामने उसका हिसाब देना पड़ेगा, यदि आप ना देने के द्वारा गलत हैं तो आपको भी हिसाब देना पड़ेगा। आपके देने के द्वारा हम गलत इस्तेमाल करें तो हमें भी हिसाब देना पड़ेगा, अगर आप ना दे रहे हैं तो भी आपको भी हिसाब देना पड़ेगा। वो क्या कह रहे हैं, तुमने क्या कहा, नियमित रीति से, सच्चाई से, सच्चाई से, शब्दों को ध्यान रखिए, आपने वाचा बांध दिया, सच्चाई से और विश्वास के साथ अपना धन देंगे विश्वास के साथ। अब ये 5 बातें जो मैं 5 बातें, आनंद पूर्वक उदारता से, नियमित रीति से, सच्चाई से, विश्वास युक्त, इनको आप नोट कर लीजिए और अपने घर में जाकर मनन करिए, अपने परिवार में जाकर मनन करिए। हमारे पास सब कुछ खर्चे के लिए पैसा निकल जाता है लेकिन प्रभु को देने के लिए हम सबसे पीछे रहते हैं, ये दुख की बात। और फिर हम कहते हैं हम विश्वासी हैं, फिर हम कहते हैं क्या मैं गवाही देते, लेकिन इसमें तब परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसको देखेंगे। ध्यान दीजिए, परमेश्वर के वचन के आरंभ से ही, परमेश्वर के भवन में देने के द्वारा ही आरंभ से, जब भवन बनाया गया वहां बॉक्स रखे जाते थे, ऐसे बॉक्स रखे जाते, है ना, किसी दिन उसको ओल्ड टेस्टमेंट में मैं पहले इतिहास में आपको लेकर आऊंगा, उसमें ऐसे बॉक्स रखे जाते थे, इसी तरह उसी को हमने फॉलो किया। वाचा बांधने के बाद हम भी उसे पूरा करने के लिए पवित्र बाइबल में बार बार करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, कई बार हम कुछ घिर जाते, जब हम इस आग में आगे बढ़े तो 3 शब्द मैं आपके सामने लाऊंगा, पाप, अपराध और अधर्म। अदन की वाटिका में हमने पाप किया और पाप के कारण परमेश्वर की महिमा से हम रहित होकर अलग हो गए, पाप के कारण। पर प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमें पाप के और हमारे पर दंड लग गया, दंड लग गया। परमेश्वर ने उस पाप के दंड से मुझे और आपको अपने प्रेम और अपने में बचा लिया, और उसने क्या करा, अपने लहू को बहाया और हमें बचा लिया। तो पाप के दंड से उसके बाद छुटकारा दिया। अब उसके बाद दो शब्द और हैं, वो शब्द हैं अपराध और अधर्म। अपराध और अधर्म, अपराध हमसे हो जाते हैं, चूक जाते हैं, जिसको चूकना है हमसे हो जाते हैं। और लेकिन जब हम अपराध होता है तो हम चौंकते हैं, हम परमेश्वर क्षमा मांगते हैं, लोगों से क्षमा मांगते हैं। इस भाई को मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने गुस्सा कर दिया, ये मेरा अपराध है। और परमेश्वर मुझसे बात करता है, मैं जाता हूं, भैया मुझे माफ करना, मेरे को आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मैंने आपको गुस्सा कर दिया, मुझे आप क्षमा। मैंने प्रभु से भी मांगा और परमेश्वर भाई से भी मांगा, क्षमा मांगी, प्रभु ने मेरे अपराध को क्षमा। लेकिन अगर मैं उस अपराध को के लिए भाई से क्षमा नहीं मांगने के बाद फिर मैं करता हूं, बार बार मैं करता हूं, तो फिर मैं वो अपराध के बारे में नहीं आता, तब दूसरे शब्द में आता है, तब वो आता है अधर्म के उसमें आता है, तब वो अधर्म बन जाता है। अधर्म मतलब ये है कि ये जानते हुए भी गलत है। हम सीख रहे, ध्यान दीजिएगा, ये जानते हुए भी कि गलत है और फिर भी हम उसको हट्टी बन करके करते चले जा रहे हैं। कान में वचन आ रहा है, लोग सलाह दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, फिर भी हम हट्टी बन, जब हट्टी बनकर कोई चीज काम करते रहते हैं हम, वो हमारे जीवन में वो अधर्म होता है। और परमेश्वर, अगर आप समय है नहीं है, लेकिन घर में जाकर के भजन संहिता 103 को पढ़ेंगे, भजन संहिता 51 को पढ़ेंगे, भजन संहिता 32 को पढ़ेंगे, वहां पर दाऊद बहुत ही स्पष्ट रूप से इन सारे शब्दों का इस्तेमाल करता है। तो जो बात को जानना कि गलत है, फिर भी मैं उसको करता चला जा रहा हूं, करता चला जा रहा हूं, करता चला जा रहा हूं, वो हट्टीपन है, वो अधर्म। परमेश्वर उसका लेखा ले, परमेश्वर उसका लेखा। तो मुझे और आपको तीनों शब्दों पर ध्यान देना। प्रभु धन्यवाद हो, आपने मुझसे मुझे पाप के धन से छुटकारा दिया, मैं आपकी स्तुति करता हूं। प्रतिदिन मेरे से जो अपराध होते, प्रभु मैं क्षमा मांगता हूं, प्रभु के लोगों से क्षमा मांगता हूं, बढ़ते जाओ, दोबारा नहीं करता। सुलेमान कहता है जो अपने अपराध मान लेता है और उसको छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी, छोड़ देता है, मानना ही नहीं है लेकिन छोड़ देना। अब मैं बार बार उस भाई के साथ जाके नहीं गुस्सा करूंगा, आज गुस्सा करा, कल फिर गुस्सा करा, आज करूंगा फिर गुस्सा, तो क्या हो गया, नहीं, गलत है, फिर मैं दोबारा नहीं करूंगा, मैं सावधान रहूंगा, परमेश्वर सहायता मांगूंगा, परमेश्वर के वचन को लेके चलूंगा, और तब मैं उस तरह से जीवन व्यतीत करूं जो परमेश्वर का वचन कह रहा है। लेकिन अगर मैं जानता हूं ये गलत है, चोरी करना गलत है, झूठ बोलना गलत है, ऐसा करना गलत है, यहां तक कि अपने काम पे भी समय से जाना गलत, नहीं जाना समय से नहीं पहुंचना गलत है, तब भी अगर मैं फिर भी उसमें रहता तो गलत। सो मुझे और आपको इन तीनों चीज से बचना है। अगर आपने आज तक अपने पापों की क्षमा नहीं पाई और आपको ये निश्चय नहीं कि आज अगर आप मर जाए प्रभु के राज में आप प्रवेश करेंगे, आप परमेश्वर के संतान बन चुके हैं, संतान कब बने हैं, शारीरिक जन्म का समय मैंने पिछली बार बताया था, आत्मिक जन्म का समय कब वो आपका आत्मिक जन्म हुआ, तो आपको आज ही अपने पापों का पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर, पहली बात। अगर आप उसके संतान बन चुके हैं, संतान बन चुके, अपने जीवन को आपने उसको समर्पण किया है, तो आप अपराध से बचे रहे। और अगर कोई अपराध आपके जीवन आता है, उसके लिए आप क्षमा मांगे और उसको छोड़ दो, लेकिन अधर्म में होकर जीवन मत व्यतीत करिए। और कितने लोग अधर्म में होकर जीवन व्यतीत करते हैं, जानते हैं उन्होंने वो गलत हैं, जानते हैं उन्होंने गलत किया है, लेकिन किसी ना किसी मनुष्य के दबाव में या किसी परिस्थिति के कारण किसी और के, उससे वो निकलने नहीं पाते, निकलने नहीं पाते, और तो वो दबते चले जाते, और उसका प्रतिफल तुरंत नहीं दिखाई देता, बाद में दिखाई। परमेश्वर का वचन गंभीर है, हमें परमेश्वर के वचन का सम्मान करना है, हमें परमेश्वर के वचन का आदर करना और गंभीरता से उसको लेना है। तो ये कह रहा है, ये चीज हमें देखनी है। अब थोड़ी देर के लिए मैं आपके साथ इस दूसरे कुरिन्थियों में आना चाहूंगा। जब हम दूसरे अध्याय के 8वें 9वें अध्याय को देखते हैं, तो 8वें अध्याय में कुछ बातों को संक्षिप्त में हम देखना चाहेंगे। पौलुस बड़े स्पष्ट रूप से लिख रहा है, पहले पसे में पढ़ाऊंगा, हे भाइयों, 2 कुरिन्थियों 8:1, हे भाइयों, अब हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह के विषय में बताना चाहते हैं जो मैसेडोनिया की कलीसियाओं पर हुआ। मैसेडोनिया कलीसिया, मैसेडोनिया कलीसिया बहुत निर्बल कलीसिया थी, धनी नहीं, उन्होंने बहुत संघर्ष अपने जीवन में चाहा, लेकिन उनकी इसकी विशेषताएं थी कि वो परमेश्वर के लोगों के परमेश्वर कलीसिया की चिंता बहुत करते, और तब वे पौलुस का उदाहरण दे रहा है। वो कह रहा है संकटों की कठिन परीक्षा में, संकटों की कठिन परीक्षा में उनके अपार आनंद और घोर दरिद्रता में फलस्वरूप उनकी उदारता उमड़ रही। दरिद्रता है, घटी है, कमी है, अभाव है, लेकिन उनके हृदय में आनंद है, आनंद है। ये वो परमेश्वर के आत्मा का, और तब तो कह रहा है उसमें हृदय में फलस्वरूप उनकी उदारता उमड़ती रही। उमड़ना क्या समझते हैं? बढ़ती गई। वो किसी प्रकार से कुड़कुड़ाहट का जीवन नहीं व्यतीत कर रहे थे, किसी प्रकार से दबाव का जीवन नहीं व्यतीत करते, वो आनंदित है। ठीक है प्रभु, अगर तूने मुझे हमें घटी और कमी में रखा है। एक व्यक्ति जब परेशान होता है, जब वो अगर किसी कमी में रहता है, लेकिन कमी में वो ऐसे भाव में पड़ जाता है कि मैं किसी को ये ना दिखाऊं, कोई मुझे ये ना जान पाए मैं कमी में हूं, तो मैं अपने आप को ऐसा दिखाऊंगा कि मैं बहुत धनवान हूं, बहुत धनवान, और तब मैं ऐसे कदम बढ़ाऊंगा या ऐसे काम करूंगा जिससे लोग मुझे धनी समझें, लेकिन वास्तविकता क्या है, मैं दबता चला दबता नहीं। जो हमारी वास्तविक स्थिति है उसमें जीना है, उसे जीना है। परमेश्वर ने जिसको दो रोटी दी वो दो रोटी खाए, जिसको पांच रोटी पांच रोटी, लेकिन मैं दो रोटी खा के इस तरह से नहीं कोशिश करूंगा कि मैं सुबह शाम मक्खन और ब्रेड और ये सब कुछ आता हूं और मैं बहुत, चाहे मुझे कर्जा लेना पड़े चाहे कुछ, दिखावे का जीवन हमें याद दब जाता है, और वो दिखावे का जीवन बहुत परेशान होता है, अधिकतर वो असंतुष्ट भी हो जाता है, असंतुष्ट हो। पौलुस इस बात को जाकर के फिलिपियों के चार अध्याय में, तो जो कुछ भी परमेश्वर प्रति हम करते गए आभारी हैं, धन्यवाद, और उसी में प्रभु ने मकान दिया, स्तुति नहीं दिया कोई बात, बढ़ा दिया ठीक है, ने छोटा दिया बढ़ा दिया, जो कुछ भी है प्रभु का धन है। हम लिएंगे प्रभु के लिए, हम दूसरे से तुलना नहीं करेंगे, किसी दिन करेंगे। प्रभु ने मुझको पिछली बार में कहा था तुम एक दूसरे का भार उठाओ, अपना भार स्वयं उठाओ, उसको गलतियों उसके पांच छह अध्याय में हमने इन दो पदों को देखा था स्पष्ट। तो यह कह रहा है उसकी दर्शन, तब वो क्या कह रहा है, मैं साक्षी देता हूं, पौलुस साक्षी दे रहा है, मैं साक्षी देता हूं कि उन्होंने अपनी शक्ति के अनुसार वरन क्षमता से भी अधिक अपनी इच्छा से दिया। ये कलीसिया में देने वाले लोग दरिद्र थे, घटी कमी में थे, लेकिन उन्होंने दिया। हमारे बीच में एक परिवार है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं उनके बारे में एक बात जानता हूं, बहुत साधारण काम करते हैं, उम्र बहुत ज्यादा उनकी, लेकिन मैंने इस बात को देखा जिस दिन से उन्होंने कलीसिया की सदस्यता ली, बहुत कठिन परिस्थिति में उनको जीवन व्यतीत करा, लेकिन उनकी उदारता मैंने देखी। आपको मालूम है संडे जब चर्च नहीं हो रहे थे, उन्होंने जैसे कहा गया था अपने घर में उन्होंने आराधना, चाहे चार जन थे चाहे पांच जन थे, आराधना करी और वहां ऑफरिंग जमा करते थे, उस ऑफरिंग को जमा करके यहां कलीसिया में लाके दिया। शायद हमारी दृष्टि में बहुत, शायद हम उन पर ध्यान देते हो, शायद हम उन पर ध्यान देते हो, लेकिन प्रभु की दृष्टि उन पर लगी। और मेरे प्रियो यह है जो उदाहरण यहां पर हम पढ़ रहे हैं वो उदाहरण है, और हर कलीसिया में परमेश्वर किसी ना किसी को ऐसे उदाहरण के रूप में रख देता है ताकि हम उनसे सीखें, ताकि उनसे हम प्रोत्साहन प्राप्त करें, ताकि उनके द्वारा कुछ हमें प्रोत्साहन मिले और हम आगे बढ़ सकें। ये है, और तब वो कहता आगे चल करके उन्होंने अपनी इच्छा से दिया और संतों की सहायता, उस समय सिस्टम दूसरा था, संतों की सहायता करने में सहयोग देने के लिए बार बार उन्होंने विनय किया। हम कई बार देने को अपना घमंड समझते हैं और परमेश्वर पर और परमेश्वर के लोगों के कलीसिया पर एहसान समझते हैं। आप एहसान नहीं कर रहे, कलीसिया में देना मेरा मेरा मेरे द्वारा, मैं कलीसिया में देता हूं, मैं एहसान नहीं करता, मैं कलीसिया पर परमेश्वर पर या परमेश्वर के लोगों पर एहसान नहीं करता। ये अगर मैं सोचता हूं तो गलत है, ये मैं पाप में हूं, मैं घमंड में हूं, मुझे झुकना है, मुझे दीन बनना है। ना केवल इतना, क्या हुआ होना कर रहा है क्षमता में, और संतों की सहायता के लिए सहयोग देने के लिए बार बार पांच पद, और उन्होंने हमारी आशा से परे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को पहले प्रभु को किसको दे दिया, उन्होंने डेडिकेटेड देयर लाइफ टू द लॉर्ड, उसने उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर को पहले समर्पित किया। मेरे प्रियो अगर आप देना में पीछे हैं तो इसका मतलब हमारा समर्पण प्रभु प्रति पूरा नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में बहाने आते हैं, सोच आते समझ आते हैं, सो इससे पहले कि हम प्रभु की कलीसिया में दें, हमें अपने जीवन को प्रभु के हाथों, और प्रभु ने मुझे सिखाया, प्रभु ने मुझे सिखाया, जब तक मैं सेवा में नहीं आया था, सेवा में आने के बाद भी, इससे पहले मुझे धन मिलता था जब एचएल में था उस समय, उसके बाद भी जब सेवा में भी आगे धन मिलता था, पहले खर्च हो जाता था मिलने से पहले, इसको देना उसको देना उसको देना। एक बार मुझे जब दिल्ली में कुछ दिन रहना हुआ, और जब मैं दिल्ली में रहा तो सलोमी का आना था उस समय, और तब मेरी फूफी वहां पर रहती थी उनके यहाँ, जब भी मैं जाता था फूफी हमारे लिए जरूर कुछ ना कुछ करते, और मैं बड़ी आशा से, उससे पहले दो दिन पहले यहां से बाराबंकी से तीन भाई आ गए थे जो ओएम के भाई थे, ओएम टीम हमारे साथ काम करती, उसमें एक भाई सोलोमन आ गया। अब परमेश्वर मुझसे वचन बात कर, ये भाई आया है तू इसको कुछ दे दे। मेरे जेब में उस समय केवल 40 रुपए थे, मैंने प्रभु जी मैं इसको दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा, यहां मेरे को कोई नहीं जानता। अब मैं उसके साथ बातचीत कर रहा हूं, खाना तो फ्री में मैं इसमें खिला दिया था, खाने के लिए पैसा नहीं देना पड़ा था, मैं उसे खिला दिया, और संघर्ष था, संघर्ष था, मुझे देना है नहीं देना, क्या करना है ना, बात उससे कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बार बार मुझे थोड़े मार कुछ देना है। खैर फाइनली प्रभु के धन्यवाद हो, प्रभु ने सहायता की, मैंने लब में उसको आधा रखा और उसको दे दिया, 20 रुपए रखे, 20 रुपए मेरे पास। दूसरे दिन सैटरडे था, मैं फूफी के, तो जब भी मैं फूफी के आता था जरूर कुछ, मैंने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। 9 रुपए की मैंने मिठाई खरीदी, 1 रुपए का मैंने बस का टिकट लगाया, मैं उनके घर पहुंचा, अच्छी तरह बात हुई, चाय पिए, सब कुछ बात है। उसके बाद सलून में आना था, हैप्पी छोटी थी तो उनको मालूम चला कि बहू आएगी, कहने अच्छा बेटा ऐसा है, मुझे उन्होंने कहा बेटा ठीक है तुम आयो, कब आ रही है, मैंने बताया, अच्छा तुम उसको लेकर आना। अब उन्होंने उसको लेकर आना, मुझे खाली हाथ भर कर दिया। अब मैं बड़ा परेशान था, क्यों आया यहाँ, हमेशा तो फूकी देती, आज कुछ नहीं है, और मेरा मेरे और इस सलोमी ने आंटी ने कहा था उनकी एक दोस्ती कि आप उनके यहाँ जरूर विजिट कर लेना, पास में रहते तो लोग। खैर मैं गया, मैं उनके यहाँ पहली बार गया, मैं नहीं जानता था, वहां बैठा मैं, और बैठ करके उन्होंने मेरी टेस्टिमनी सुनी, साक्षी दी कैसे मैं सेवा में आया, बातचीत हुई, उन्होंने खाना भी खिलाया, और जब मैं चलने लगा तो उन्होंने मेरे हाथ में एक लिफाफा रखा, उनसे आशा नहीं की थी, आशा कहाँ की थी, फूफी से आशा, फूफी से जिससे आशा की थी, मेरा ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं था, मेरा ध्यान लोक की तरफ, फूफी से आशा की थी, वहां हरी झंडी मिल गई, और बहुत मैं परेशान बेचान, क्यों आया, क्यों मैंने पैसा खर्च, यहां मैंने आशा नहीं की, बिल्कुल नहीं। अब उन्होंने मुझे, अंकल थे, कहने ठीक है बेटा मैं तुम्हें गाड़ी में बैठा दूं, बस में बैठा दूं, मैंने नहीं नहीं अंकल कोई बात नहीं, कोई बात मैं ले लूंगा, बस ले लूंगा। मेरे अंदर क्या चल रहा था, जितनी जल्दी मुझे छोड़े होते, देख लो लिफाफा खोलो, देखो इसके अंदर क्या है, जैसे मैंने देखा अब तो कोई नहीं देख रहा, नहीं देख रहा बस में लिफाफा, जैसे लिफाफा खोला मैं आंसू फुट कर रोया, मैंने प्रभु से पश्चाताप किया अपने अविश्वास के कारण। वो दिन मैं कभी नहीं भूला और कभी नहीं भूलूंगा, वो दिन था प्रभु ने मुझे सिखाया, बस में मैंने रो कर पश्चाताप किया, क्षमा मांगी, घर में आया, रूम में आया, उठने हैं वो लोग, मैंने प्रभु मेरे विश्वास का बढ़ाई, उस समय 100 रुपए बहुत होते थे, 79 की बात है, 100 रुपए दे। दूसरे दिन संडे था, मैं चर्च में आया, जो कुछ मुझे देना था मैंने दिया और मैं निकल गया। जैसे निकल गया एक भाई आया, भाई ने हाथ मिलाया, मैं नहीं जानता था, और निकलते हुए चला गया, मैंने हाथ देखा तो उसने मेरे हाथ में 50 का नोट छोड़ दिया। मंडे था, मैं अपनी क्लास में बैठा हुआ था, हमारे डायरेक्टर उन्होंने बुलाया, कहने लॉली एक नुल्ला तुम्हारे लिए है, जिसने दिया है उसने कहा कि मेरा नाम मत बताइएगा। मैंने लिफाफा खोला, उसमें इतना पैसा था कि मैं अपने वाइफ के बच्चों का आने जाने का किराया और वहां दिल्ली रहने का 15 दिन उनको रहना था सब खर्चा कर सका। वो दिन है जो प्रभु ने मेरे विश्वास को बढ़ाया, और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, उस दिन से आज तक प्रभु की दया से मुझे और सीखना है, मुझे और करना है, मुझे और बढ़ना है, ये सच है। लेकिन वो दिन परमेश्वर ने मुझे सिखाया, और मैंने पश्चाताप करके एक सच्चे पश्चाताप से अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दिया, और वहां के बाद से जब बाराबंकी हम गए सेवा में, किस प्रकार प्रभु ने आप बढ़ाया, और प्रभु आज भी जानता है, और मेरे लोग जो मेरे साथ बहुत चारों तरफ को रहते हैं वो जानते हैं कि परमेश्वर ने मुझे विश्वास का वरदान दिया है। मेरे प्रियो परख का देखो यहोवा कैसा भला है, 7वां पद, परंतु जैसे तुम सब बातों में अर्थात विश्वास पहली चीज, वचन दूसरी चीज, ज्ञान तीसरी चीज, हर प्रकार के उत्साह। चौथी चीज प्रेम में, वैसे ही अनुग्रह के इस कार्य में भी भरपूर होते जाओ, बढ़ते जाओ। वैसे ये अनुग्रह का कार्य, जब तक परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर और आप पर ना हो, हम परमेश्वर को दे नहीं सकते। जब तक परमेश्वर का अनुग्रह मेरे पर आप पर ना हो, हम उदार नहीं हो सकते। कुछ चीज को इधर उधर बांट देना वो काफी नहीं है, काफी नहीं, उससे संतुष्ट मत होइए। हमसे ज्यादा अन्य जाति लोग हम मेरे और आपसे ज्यादा बांटते हैं, उनसे ज्यादा संतुष्ट मत होइए। परमेश्वर के सिद्धांत को जानते हुए पहले अपने जीवन को सच्चाई के साथ प्रभु को दे दीजिए, पाप से छुटकारा पा लीजिए, बंधन से छुटकारा पा लीजिए। हम प्रभु में आने के बाद भी बहुत सारे बंधनों में रहते हैं। हमारा ये बंधा रहता है, मस्तिष्क बंधा रहता है, हमारा हृदय बंधा रहता है, हमारी सोच बंधी रहती है, हम आजाद नहीं हो पाते। हमें आजादी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं माफ कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 100 रुपए देंगे तो परमेश्वर तो आपको 1000 रुपए देगा, मैं ये नहीं कर रहा। शिक्षा ये है कि हमारा परमेश्वर के साथ ऐसा संबंध हो, हम इस प्रकार से प्रेम में हो, चाहे कठिन परिस्थिति हो, चाहे कैसी स्थिति क्यों ना हो, हम इस देने के द्वारा प्रभु का आदर कर सके, प्रभु का सम्मान कर सके, प्रभु के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित कर सके, प्रभु के प्रति आज्ञाकारिता को दर्शा सके। ये आज्ञाकारिता है, ये प्रेम का प्रदर्शन है, ये विश्वासयुक्तता का प्रदर्शन है। हम प्रभु के विश्वासयुक्तता को, प्रेम को प्रदर्शित कर सके, ये हमारा जीवन है। परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ हुई, धन्यवाद देती हो, क्योंकि प्रभु ने आपको पाप से छुड़ाया। पहली बात, परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ और धन्यवादित हो, आभार व्यक्त करिए जो परमेश्वर आपको संभाल रहा है। और जो कुछ भी आप करना चाहते हैं परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता में, धन्यवादित में, उसके विश्वास में होकर के, आज्ञाकारिता में होकर, उसकी अधीनता में होकर, आनंद के साथ। बीमारी आ सकती है, कठिनाई आ सकती है, घटी आ सकती है, चाहे कुछ भी हो मेरे प्रियो, हम ठीक है, हम डॉक्टर को इलाज में देंगे, इलाज कराएंगे, बीमारी खर्च करेंगे, लेकिन प्रभु के उनके हाल हाथ नहीं छोड़ेंगे, टाइट करेंगे। क्यों? उससे बढ़कर प्रभु है, उससे बढ़कर प्रभु है, प्रभु दिनाला है। नियमित रीति से जैसे महीना शुरू होता है, हमारे पास धन मिलता है, हम प्रभु का सबसे पहले धन्यवाद करते हैं। परिवार में प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपने हमें स्वास्थ्य दिया। यदि हमारे पास हाथ ना होते तो क्या हम अपनी रोटी कमा सकते थे? यदि हम स्वस्थ ना रहते, बिस्तर पर रहते, तो क्या हमें ऑफिस से या कहीं से काम मिल सकता? नहीं मिलता। लेकिन प्रभु ने कितनी कृपा की हमारे पास, कितनी कृपा। हम कैसे उस कृपा को दर्शाएंगे, कैसे दर्शाएंगे? हमारे सारे खर्चे हो जाते हैं, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया कलीसिया के बारे में तो वहां ही पर हम क्यों दें? परमेश्वर को देना ये बर्डन नहीं है, ये संबंध है। जिससे आप प्यार करते हैं आप उसके लिए सब कुछ खर्च करने के तैयार। तो प्रभु सहायता करें, और इसलिए कह रहा जैसे उसमें वैसे उसमें और अधिक बढ़ते चले जाओ, और अधिक बढ़ते चले जाओ। नवा अध्याय भी बहुत सारी बातों को, बहुत सारी चीजें जो 8वें 9वें अध्याय में, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। पर अंत में कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करें कि हम सचमुच में परमेश्वर के प्रेम को समझ सकें, परमेश्वर के उद्धार को समझ सकें। जो वाचा हम लेते हैं, ये वाचा हम बाध्यता में नहीं लेते, बाध्य होकर, भाई हम आपको सदस्य नहीं बनाएंगे अगर आप वाचा नहीं माने, ना ना ना, आप स्वतंत्र हैं, इच्छा से समर्पण। क्यों आप इस परिवार को चुन रहे हैं? आप कलीसिया को एक अपना घर मान रहे हैं, इसको चुन रहे हैं। मैं इसलिए इस बात को शेयर कर रहा हूं निरंतर रीति से, जैसे मैंने कहा, क्योंकि भाइयों ने मुझसे कहा था, उनका ये सलाह थी, आदेश था या निर्देश, जो कुछ भी कह ले उनकी तरफ था। दूसरी चीज, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं आने वाले दिनों में, कुछ और लोग जो बपतिस्मे तैयार है, कुछ और लोग जो सदस्यता तैयार है, वो और अधिक समझ सके। सुसमाचार हमें यहां तक सीमित नहीं रखता, यहां तक सीमित, और हमारे बहुत बार सुसमाचार यहां बढ़ जाता है और हम वही बोलते रहते हैं, वही बोलते रहते हैं, वही बोलते रहते हैं, वही बोलते रहते। नहीं, सुसमाचार इज लाइफ, गॉस्पल इज लाइफ। वो लाइफ में हमारे होना चाहिए, जीवन में हमारे। और वो लाइफ क्या है, वो जीवन क्या है? प्रभु यीशु मसीह, स्वयं प्रभु यीशु, वो हमारे जीवन। और मुझे और आपको प्रार्थना करनी चाहिए, हमें अपने लिए प्रार्थना करनी चाहिए, एक दूसरे को प्रार्थना करनी चाहिए, एक दूसरे को प्रार्थना कि हम इस चीज को पालन करते हुए आगे बढ़ते, एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन का कारण बन सकते। और तब उसके बाद हम समाप्त करते हैं, कहता है वाचन, फिर वो आगे दूसरे स्थान पे जाने के लिए, यदि हम किसी दूसरे स्थान पे जाएंगे तो हम आदर के साथ, कहता है कलीसिया छोड़ेंगे तो हम आदर के साथ त्याग पत्र देंगे और अमीयता शिविर स्वयं ऐसी किसी कलीसिया में जोड़ेंगे जहां इस वाचा की आत्मा और पिता परमेश्वर वचन के सिद्धांतों को पालन होता है। आदर के साथ, दोष लगा के नहीं, झूठा ठहरा के नहीं, कुछ और बात को करके नहीं, आदर के साथ। और जब अगर आपने इन वाचाओं को बांधना है तो आप स्मरण करें, लेकिन हम चाहते हैं परमेश्वर के वचन को समझें, सीखें और सच्चाई के साथ आगे बढ़ सकें, सच्चाई के साथ आगे, वो जीवन आपका दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके, आपके द्वारा दूसरे लोग प्रोत्साहित हो सके। तो वो वचन केवल दिमाग में नहीं लेकिन मेरे और आपके जीवन में उतर सके, मेरे और आपके जीवन, और हम उसको, और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है केवल तुम सुनने वाले ही नहीं लेकिन उस पर चलने वाले, वचन को केवल सुनने वाले ही नहीं लेकिन वचन पर चलने वाले। और परमेश्वर का आदर जब भी प्रदर्शित होगा जब हम उसको केवल सुनेंगे नहीं लेकिन उस पर चलेंगे। मेरे प्रिय प्रभु, सहायता करें कि हम आने वाले दिन में और अधिक प्रार्थना कर सकें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, एक दूसरे के लिए, ताकि हम उस वचन को और अधिक पालन करते हुए परमेश्वर की महिमा कर सकें। और ये आपका आत्मिक परिवार, ये कलीसिया जिसमें परमेश्वर मुझे और आपको जोड़ा, और अधिक मजबूत हो सके और हम परमेश्वर का आदर कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें।